ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस इकाई को प्रतिमाह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 37 अरब रूपये के निवेश वाली इस इकाई की डिजाइन आउटपुट क्षमता 3,60,00,000 यूनिट प्रतिमाह है।
जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, और फॉक्सकॉन, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। दिस ज्वाइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्वीकृति देश को प्रौद्योगिकी का शक्ति भंडार बनाने की दिशा में एक और कदम है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में 16 महिला माओवादी सहित 31 माओवादी मारे गए हैं। बीजापुर में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने ये जानकारी दी। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह का बिहार में सिवान जिले के उनके पैतृक गांव वसीलपुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत आत्मा को अंतिम विदाई देने सिवान में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में स्थानीय निवासियों ने देश की संप्रभुता की खातिर उनके सर्वोच्च बलिदान पर गौरव व्यक्त किया। ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने सरकार से दिवंगत जवान की पत्नी को रोजगार और जीवन यापन के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। भारत की एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत 1267 प्रतिबंध समिति में अपना मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस संगठन को पाकिस्तान द्वारा मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय अधिकारियों से भी मिलेगी। तुर्की में आज यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल सीधी शांति वार्ता के लिए मिलेंगे। दोनों देश शांति वार्ता बहाल करने के करीब हैं। दोनों देशों के बीच आमने सामने की चर्चा 3 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। रूस की ओर से सीधी बातचीत के प्रस्ताव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तुर्की में बातचीत करने का अनुरोध किया था। उत्तरी और दक्षिणी गजा में इजरायली हवाई हमलों में करीब 70 लोग मारे गए हैं। इससे एक दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सशस्त्र समूह हमास के पराजित होने तक वे फिलिस्तीन क्षेत्र में हमले नहीं रोकेंगे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और अस्पतालों के अनुसार उत्तरी गजा में जबालिया के आसपास हुए हमलों में ही कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में बुधवार को कतर के साथ 12,000,00,000 करोड़ डॉलर के आर्थिक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्री ट्रंप ने अमरीका और कतर के बीच 243.5 अरब डॉलर से अधिक के आर्थिक करार की घोषणा की, जिसमें कतर एयरवेज को बोइंग विमान और जीई एरोस्पेस इंजन की बिक्री शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।